नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। फोर्ब्स ने एशिया के टॉप 20 बिजनेस वुमेन की लिस्ट जारी की है, जिसमें 3 भारतीय महिलाओं को जगह मिली है। फोर्ब्स की ओर से जारी किए गए नवंबर के अंक में उन 20 महिलाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने कोविड चुनौती के बाद भी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में सफलता पाई है। बता दें कि फोर्ब्स समय समय पर देश के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों की सूची जारी करता है। एशिया के 20 महिला उद्यमियों की सूची में भारत के 3 बिजनेस वुमेन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन सोमा मंडल, एमक्योर फार्मा के इंडिया बिजनेस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर और होनासा कंज्यूमर की को फाउंडर और चीफ इनोवेशन ऑफिसर गजल अलग शामिल हैं। रियलिटी कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स ने घरों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 16 नई आवासीय परियोजनाएं शुरू करने की योजना बनाई है। लोहड़ा ब्रांड के तहत परिचालन करने वाली मैक्रोटेक डेवलपर्स की गिनती देश की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में की जाती है। मुंबई महानगर और पुणे में मजबूत उपस्थिति रखने वाली इस फर्म ने बेंगलुरु के बाजार में भी कदम रखे हैं। निवेशकों के समक्ष एक प्रस्तुति के दौरान कंपनी प्रबंधन ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 की अक्टूबर मार्च छमाही में 16 नई आवासीय परियोजनाएं शुरू करने की तैयारी है। करीब 10,300 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य वाली ये परियोजनाएं पूर्ण स्वामित्व और साझा विकास का मिला जुला रूप होंगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक लोढ़ा ने पिछले हफ्ते पीटीआई भाषा के साथ बातचीत में कहा था कि आवासीय कर्जों पर ब्याज दर बढ़ने के बावजूद घरों की मांग में मजबूती बनी हुई है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों के सभी दूरस्थ गाँवों को दिसंबर 2023 तक 4G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। रिजिजू ने यहां एक बैठक में पूर्वोत्तर के सभी गांवों में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक परियोजना की समीक्षा के बाद कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति हो रही है। उन्होंने कहा, इसलिए कोई भी दूरस्थ क्षेत्र इंटरनेट की उपलब्धता के बिना ना रहे और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है। उन्होंने पीटीआई से कहा, पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी दूरस्थ गाँवों को दिसंबर 2023 तक 4G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना और उन सभी को साथ लाकर खामियों को दूर करना है। रिजिजू ने ट्वीट किया, पूर्वोत्तर के सभी दूरस्थ गांवों में 4G मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए 4G संतृप्ति परियोजना की समीक्षा की। दूरसंचार सचिव और सशस्त्र बलों समेत अन्य अधिकारियों ने भी समीक्षा में भाग लिया। प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए उचित समन्वय स्थापित किया जा रहा है। नकदी की तंग होती स्थिति और कर्ज में दशक के उच्चतम स्तर की 18% की वृद्धि तथा जमा में कमी के बीच एक रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि बैंक संपत्ति और देनदारी दोनों स्तरों पर जोखिम से बचाव को लेकर पर्याप्त उपाय नहीं कर रहे हैं। नकदी की कमी का प्रमुख कारण भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए बैंकों से अतिरिक्त कोष को वापस लेना है। खुदरा मुद्रास्फीति पिछले 10 महीने में रिजर्व बैंक की संतोषजनक सीमा से ऊपर बनी हुई है। इसको देखते हुए आरबीआई ने महंगाई को काबू में लाने के लिए प्रमुख नीतिगत दर रैपो में पिछले 6 महीने में 1.90% की वृद्धि की है। आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति 2% घट बढ़ के साथ 4% पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। बैंकों में शुद्ध रूप से अप्रैल 2022 में औसतन 8.3 लाख करोड़ रुपये की नकदी डाली गई। ये अब करीब 1/3 कम होकर 3 लाख करोड़ रुपए पर आ गई है। इसके अलावा सरकार ने दिवाली के सप्ताह में अपने नकद शेष का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया है और इसके परिणाम स्वरूप शुद्ध LAF में सुधार हुआ है। विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख और गुरुपर्व के मौके पर देश में सोयाबीन और सरसों की अधिकतर मंडियों के बंद होने के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में मंगलवार को सोयाबीन तेल, कच्चा पाम तेल, बिनौला और पामोलिन तेल कीमतों में गिरावट आई। वहीं सोयाबीन तिलहन, सोयाबीन डीगम तेल, सरसों एवं मूंगफली तेल तिलहनों के भाव पूर्ववत बने रहे। कारोबारी सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में 1% की गिरावट आई है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में अधिक घट बढ़ नहीं है। मलेशिया एक्सचेंज की गिरावट से तेल कीमतों पर दबाव कायम हो गया और CPO तथा पामोलिन तेल हानि के साथ बंद हुए। जाड़े की मांग और शादी विवाह के मौसम की मांग होने के बीच गुरुपर्व के मौके पर अधिकतर मंडियों के बंद होने से सरसों, मूंगफली तेल तिलहन और सोयाबीन तिलहन कीमतें पूर्व स्तर पर रहीं। रियलिटी कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए पुणे में 12 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी की अनुमानित बिक्री राजस्व क्षमता लगभग 2,000 करोड़ रुपये है। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि इसने पुणे के मुंडवा पूर्व में 12 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। इस जमीन पर मुख्य रूप से एक प्रीमियम आवासीय परियोजना तैयार की जाएगी। सूचना में कहा गया है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए की अनुमानित राजस्व क्षमता के साथ इस परियोजना में लगभग 22 लाख वर्ग फुट क्षेत्र का विकास किया जा सकेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज के प्रबंध निदेशक और सीईओ मोहित मल्होत्रा ने कहा, मुंडवा पुणे में एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म बाजार है, ये पुणे में हमारी उपस्थिति का और विस्तार करेगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।